Market Mantra, Mantra. Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. Market Mantra, Mantra. Good evening, listeners. Welcome to Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we do not address stock or company specific queries. You can call us on 2331-4444. 2342-1050, and the third number is 2331-0464. Those of you who are calling us from outside Delhi, please prefix 011 before these numbers. My name is Sonu Sood, and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan.
Namaskar, hazir hain Market Mantra ke ek aur taaza ank ke saath. Is karyakram mein, doston, jaisa ki aap jante hain, hum desh videsh ki aarthik khabron par charcha karte hain, saath hi nazar dalte hain pramukh share bazaron ke chadte utarte graph par. आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन हम अपने श्रोताओं को आमंत्रित करते हैं देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित, पर्सनल फाइनेंसिंग से संबंधित या शेयर मार्केट से संबंधित कोई भी सवाल हो जरूर हमसे पूछें फोन कर. तीन टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं. नंबर्स हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2310-464. तीनों नंबर दिल्ली के 011 एसटीडी कोड के साथ डायल करें, अपने सवाल को पूछें. आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान अमन अग्रवाल, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, उपस्थित हैं स्टूडियो में. बहुत बहुत स्वागत अमन जी आपका.
नमस्कार.
नाउ लेट्स बिगिन टुडेज एडिशन विद द हेडलाइंस इन इंग्लिश.
एब्सोल्युटली, थैंक यू हर्ष. द हेडलाइंस: India maintained a strong trade momentum during the October-December quarter of 2024, highlights UN report. RBI gets selected for Digital Transformation Award 2025 by Central Banking in UK. And US stocks rebound with strong gains, but weekly losses mount amid escalating trade tensions.
UN की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर दिसंबर 2024 की तिमाही के दौरान भारत ने व्यापार के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया. भारतीय रिजर्व बैंक को डिजिटल पहलों के लिए यूके सेंट्रल बैंकिंग ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना. और अमरीकी शेयर बाजारों में गिरावट थमी. डाउ नैसडैक पिछले कारोबारी सत्र में लगभग 2% बढ़े.
The first story of the day: India's trade saw strong growth during the October-December quarter of 2024, according to a new report by United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD. The report highlights that while global trade expanded significantly in 2024, many developed nations faced trade contractions. However, India performed better than average, with both imports and exports increasing. According to the latest UNCTAD report, global trade grew by nearly $1.2 trillion in 2024, reaching an unprecedented $33 trillion. This surge was fueled by a remarkable 9% increase in services trade and a steady 2% rise in goods trade. India also maintained a strong trade momentum in the October-December quarter of 2024, showcasing positive growth in both merchandise and services trade. However, the report also warned that the global economy may slow down in the coming months. Concerns over geopolitical tensions and changing trade policies may create further disruptions in 2025. It suggested that balanced policy decisions and international cooperation will be crucial to maintaining trade stability. Amanji, what would you say? You know, they have appreciated, UNCTAD has appreciated the strong growth which India's trade has seen in October-December quarter of 2024, and in contrast to the world's weaker performance. In fact, many developed countries faced trade contractions. So what do you attribute this resilience in Indian trade figures that have come out?
You see, I'm very happy that this kind of a figure has come out through the UN, because that gives a more acceptability instead of the government coming out and giving these figures, because they are challenged by a large number of oppositions and across the globe. But when the UN says it's more acceptable to the people, and it's important because trade with Piyush Goyal being at the back has been focused extensively, with Modi traveling across the globe, talking about and bringing the Indian diaspora in framework, trade being talked about, discussions happening, government officials going and doing these trades. We have had the defense trade extensively gone up, which was kept at a very low level for almost last only 5 years now. We've had this happen. Similarly, large number of other things have happened with the framework of digital structures in place, which involves transfer of these funds and getting those money through the trade brackets, and including not only the FIFEO to go actually work on it, but other agencies also working independently. I think that has totally culminated into the fact that we are growing and boosting up on trade factors. We're going to see more happen because the government has projected on focusing on the MSMEs framework. They're trying to bring a lot of them on the GEMS portal. Even agriculture and others are trying to bring on the portal. So hopefully, if things go as they are planning and doing, in the next year and a half, we will see this percentage even double or triple going forward, despite the fact that the global growth is expected to go down. And then there's always these disturbances which are happening because of these wars or uncertainties because of the Trump decisions of tariffs and all. But irrespective of that, India's market acceptability in terms of goods and services both has gone tremendously high, and people are wanting to buy these goods and services, given that the quality has now improved as against what it used to be in the past.
Hamare saath ek caller jud gaye hain, Navneet Jaipur se hain. Navneet ji, bahut bahut swagat aapka. Kya sawal hai?
हाँ, नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम को. मेरा क्वेश्चन जो है ऑनगोइंग ट्रम्प टेंट्रम्स को लेकर ही है. हम लोग हालांकि अभी तक तो कुछ हद तक प्रभावित नहीं हो पाए हैं इस ट्रम्प टेंट्रम्स से, लेकिन मुझे ये अंदेशा है कि ये भारतीय कृषि व्यवस्था को काफी हद तक ये डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि जो मिस्टर ट्रम्प है वो चाहेंगे कि भारतीय जो सरकार, भारत सरकार जो है, वो कृषि उत्पादों का जो हम लोग इंपोर्ट अभी तक करते आ रहे हैं उसके अंदर और फर्दर रिलैक्सेशन दे. तो हो सकता है इससे हमारे फार्मर्स का जो है आने वाले समय में काफी चैलेंजिंग हो जाए. तो मेरा मैं ये जानना चाहता था कि भारत सरकार इसमें किस प्रकार से भारतीय कृषकों की या भारतीय फार्मर्स की सुरक्षा इंश्योर कर सकती है.
आपने बड़ी अच्छी बात करी कि जो कृषि क्षेत्र है उसमें इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. पहली बात तो जो ट्रम्प बात कर रहे हैं वो हाई गुड सर्विसेज की बात ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स हैं या ईवीज हैं, सोलर्स हैं, चिप्स हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर उनका ज़्यादा तवज्जो है. जहाँ वो ट्रेड और टैरिफ्स की बात कर रहे हैं, वो फार्म वगैरह को अभी टच नहीं करेंगे, बिकॉज अमरीका और यूरोप के अंदर 300% से लेके 500% के बीच में सब्सिडी दी जा रही हैं अलग अलग फार्म प्रोडक्ट्स पे. जबकि इंडिया के अंदर जब से WTO फेल हुआ 2001-2 के बाद से, उस समय तक हम ऑलरेडी काफ़ी हद तक रिड्यूस कर चुके थे, और हम उसके बाद भी रिड्यूस किए. सरकार की जो पॉलिसीज रही हैं उसमें वो सब्सिडी ना देके कृषि को बढ़ाने की बात रही है, और कृषि बढ़ा भी है. अगर हम परसेंटेज टू GDP देखें कृषि का, जबकि रिसेप्शन आए हैं, स्ट्राइक्स हुई हैं, लोग सड़कों पर आए हैं पिछले 2 सालों में, उसके बाद भी बावजूद भी है जो कृषि हमारा 5.5% 6% के करीब ग्रोथ दे पा रहा है GDP के कॉन्ट्रीब्यूशन में. तो मेरे विचार में अभी इसको लेके कृषि क्षेत्र में कोई ज्यादा इम्पैक्ट ट्रंप के वजह से या ट्रेड की वजह से डायरेक्ट आने की उम्मीद नहीं है. जो ज्यादातर हमारा पदार्थ खरीदते हैं, ऑर्गेनिक फूड खरीदते हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज खरीद रहे हैं. अमरीका अभी भी इतना हमारे से ऑर्गेनिक फूड नहीं खरीद रहा है जितना यूरोपियन कंट्रीज खरीदते हैं, और वहां पर अभी ट्रेड टैरिफ का कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है.
Talking of the impact of Trump's tariffs and these uncertainty which has been created by it, and considering that in April also fresh tariffs are going to be implemented as per schedule, which has been announced till now, what will be the impact on inflation? Despite the fact that the latest figures have been very good in India also and US also, the inflation figures which have come out, but do you see this becoming a problem later?
You see, I think the inflation figures figures are fairly stable and much lower than what was expected by the RBI itself. They've got much below their target level also. So I do not see the Trump factor actually making a major inflation impact. That can have a quarter effect later on, but not at least in the next quarter or so. That will be more dependent on the production we have and the kind of rains and structures which we have in this country. That will make an impact on the food production and direct inflation per se. But certainly, trade and tariffs do make an impact. And as I said, at least a quarter span would be there before the impacts can be start felt. So at least for next 4-5 months, we don't expect much to happen.
And let's go over to our next caller, Vishnu from Delhi. Welcome to Market Mantra. Please ask your question.
Namaskar, madam. Sabko, aap sabko, namaskar. Mera prashna thoda hatke hai. Main pooch raha hoon, jo Musk chahte the previously India mein entry karne ke liye, तो उनका गाड़ी के लिए कहा गया था कि भाई तुम यहाँ टीम बनाओगे तो हम अलाउ करेंगे. स्टारलिंक को भी एंट्री नहीं हुआ था, तो अब वो एंट्री हो रहा है दोनों, तो हमारा अपना जो है प्रोडक्शन उसका पर किसी कोई प्रभाव पड़ेगा?
आपने बड़ा अच्छा पूछा. देखिए, पहली बात, जो ट्रंप की गाड़ियां हैं जो टेस्ला कंपनी के नाम से आती हैं, वो कंपनी की जो गाड़ियां हैं हाई एंड बड़ी महंगी गाड़ियों में आती हैं. कहीं पे भी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की जो कैटेगरीज हैं, अगर हम लेके चलें कि 20 लाख तक हम लेके चलें कि मिडिल क्लास कंफर्टेबली अफोर्ड कर सकता है, अगर हम ये सोचें, तो उस रेंज की जो गाड़ियां उसमें टेस्ला का प्रोडक्ट नहीं आता है. तो इसलिए जो रिच सेगमेंट है, जहां पे हम बात कर रहे हैं 40-45-60-1 करोड़ के आसपास की गाड़ी की बात कर रहे हैं, 10-10 करोड़ की गाड़ियां भी हैं, तो उन गाड़ियों के अंदर वो आते भी हैं. और वो बात कर रहे हैं कि अगर वो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट सपोज इंटरनेशनल मार्केट में वो 10 करोड़ की है, तो टैरिफ्स की वजह से वो 20 करोड़ की ना पड़े, इस बात की बात हो रही है वहां पे. वहां पे ये बात नहीं हो रही है कि 10 करोड़ को कम किया जाए या कुछ और किया जाए. तो मेरे विचार में वो लोकल मार्केट्स को डिस्टर्ब नहीं करेगी ऑटोमोबाइल्स की, स्पेसिफिकली मिडिल अपर मिडिल क्लास को या इवन लोअर मिडिल क्लास को लेके. हाँ, जहां तक रिच है उसमें थोड़ा उनको लोगों को थोड़ा बेनिफिट जरूर मिल सकता है, पर उनको रिच को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जब वो 10 की खरीद रहा है तो वो 11 की खरीदे या 12 करोड़ की खरीदे, या 1 करोड़ की खरीद रहा है तो 1.5 करोड़ की खरीदे, उसको इतना फर्क पड़ता भी नहीं है उसके अंदर.
रत्नाकर हमारे अगले कॉलर होंगे कोल्हापुर से. रत्नाकर जी, बहुत बहुत स्वागत मार्केट मंत्रा में. क्या सवाल है आपका?
हेलो, गुड इवनिंग सर.
गुड इवनिंग.
मेरा सवाल है कि अभी गोल्ड भी 90 के ऊपर हो गए, 91,000 हो गए, तो उसका असर शेयर मार्केट पर बढ़ने में हो जाएगा कि शेयर मार्केट नीचे आ सकता है? ये सवाल है. और मैंने 24-25 फाइनेंशियल ईयर में शॉर्ट टर्म गेन 40,000 बुक किया है, मैंने प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन वो रियलाइज नहीं हो गए. तो प्रॉफिट बुक होना और रियलाइज होना, इसमें क्या फर्क है?
बड़ी अच्छी बात की. पहली बात तो मैं आपका दूसरा प्रश्न लूंगा. जो आपने कहा प्रॉफिट रियलाइज किया है, बट रियलाइज करने का मतलब होता है कि आपको इतना लगा कि प्रॉफिट हुआ है, बट आपने उसको एनकैश नहीं किया. जब तक आप एनकैश नहीं करेंगे, तब तक टैक्स लायबिलिटी के पर्सपेक्टिव से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये ऐसे है जैसे कि हम मकान देखें, मकान में रह रहे हैं, वो 1 करोड़ का मकान 10 करोड़ का हो गया, पर जब तक बेचा नहीं तब तक वो आपके लिए 1 करोड़ का ही है प्रैक्टिकली देखा जाए. जब आप बेचने जाएंगे वो 8 का बिके, 9 का बिके, 15 का बिके, 50 का बिके, तो जो वो गेन होगा फिर उस समय देखा जाएगा जब आपको वो पैसा रिलाइज होगा, और जिस फाइनेंशियल ईयर में रिलाइज होता है उस फाइनेंशियल ईयर के फिर टैक्स फ्रेमवर्क में आएगा. जहां तक आपने गोल्ड की बात की, देखिए जब तक रुपए स्थिर थोड़ा नहीं होता है, रुपए गिरता जाएगा और थोड़ी अनसर्टेनिटी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बनी रहेगी, तो हिंदुस्तान में गोल्ड महंगा होता रहेगा. अभी उसमें कम होने की, अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में देखें तो गोल्ड की प्राइसेस में इतनी तेज बढ़ोतरी नहीं आई है पिछले 4-5-6 महीने के अंदर जितनी हिंदुस्तान में. वो इसलिए है कि हम लोग 80 रुपये से 87 रुपीज पर डॉलर के ऊपर आ गए हैं, और उसकी प्राइसिंग लंदन में की जाती है. जहां तक आपने बात की कि गोल्ड और कैपिटल मार्केट में नॉर्मली इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है, मतलब अगर कोई चीज बढ़ रही है तो दूसरी घटती है, क्योंकि एक नॉर्मल निवेशकर जो होता है, किसी का कोई बहुत धन तो है नहीं कि कोई पेड़ लगा है तो वहां से पैसा इकट्ठा करता रहे वो, या कोई गाय मिल गई तो उससे पैसा निकल रहा है, तो जो पैसा उसके पास होता है वो या फिर या तो वो गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, घर में इन्वेस्ट करता है, या फिर शेयर मार्केट में करता है. एक जगह से निकालेगा, दूसरी जगह निवेश करेगा जहां उसको लगेगा ठीक है. तो नॉर्मली अगर गोल्ड बढ़ रहा है और वहां से वो निवेश नहीं कर रहा है तो फिर स्टॉक मार्केट बढ़नी शुरू होगी, पर अगर गोल्ड में ज्यादा निवेश कर रहा है तो फिर स्टॉक मार्केट उतना ही रहेगी. और इस समय स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है एज अगेंस्ट पिछले 4-5 महीने में.
बिल्कुल. और चूंकि आपने रुपए की भी बात कर दी और स्टॉक मार्केट की भी बात कर दी, तो हम इस सप्ताह क्या रहा है ये बता बता दें, रुपया आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस पूरे सप्ताह के दौरान 12 पैसे गिरा है और एक डॉलर की कीमत सोनू 87 रुपए पर आ गई है। और घरेलू शेयर बाजारों में भी पिछले सप्ताह तो बढ़ोतरी हुई थी लेकिन इस सप्ताह गिरावट रही, गिरावट बेहद मामूली रही। पूरे सप्ताह के दौरान सेंसेक्स 504 अंक गिरा, 73,829 पर है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 155 अंक टूटा है, 22,397 पर है। मिड कैप इस पूरे सप्ताह के दौरान, हालांकि इस पूरे सप्ताह चार दिन ही ट्रेडिंग हुई, शुक्रवार को मार्केट होली की वजह से बंद रहे, 2% गिरा है मिड कैप, लेकिन स्मॉल कैप में इस हफ्ते 4% की गिरावट हुई है।
एंड लेट्स गो टू जयपुर फ्रॉम वेयर जितेंद्र जी इज जॉइनिंग अस, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
हाँ यस मैम, सर ये बोला था कि जैसे अभी एक साल में करीब 15% शायद मार्केट गिरा हो, तो निफ्टी 50 में अगर हम कोई शेयर ले सकते हैं क्या, मतलब तो थोड़ा सा कुछ सेक्टर का बता दे अगर निफ्टी 50 में।
देखिए जी, आप जरूर ले सकते हैं, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में या हिंदुस्तान की कंपनियों में कोई ऐसी चीज नहीं हुई जिसकी वजह से गिरावट हुई है। जो गिरावट हमें पिछले 6 महीने में देखने को मिली है वो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना पैसा विड्रॉ करके और जगह लेके गए हैं और स्पेशली ज्यादातर अमेरिका लेके गए हैं बिकॉज वहां पे इंटरेस्ट रेट्स बड़े अच्छे मिल रहे थे सेफ ट्रेजरी बॉन्ड्स के ऊपर। तो इसलिए जो अभी गिरावट हुई है वो थोड़ी स्टेबल हुई है, अभी भी ये नहीं कहूंगा कि बॉटम हो गया है बट ऊपर नीचे रहेगा, थोड़ी स्टेबल रहेगी। अगर अभी आप खरीदना चाहें अभी खरीद सकते हैं, थोड़ा समय रुक के खरीदना चाहें रुक के खरीद सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, ना ही हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में और ना ही हिंदुस्तान की कंपनियों की परफॉर्मेंस में या उनके किसी भी क्षेत्र के काम करने में कोई गिरावट है या कोई खराबी है।
सो यू वुड से दैट इट्स अ सेफ टाइम टू फॉलो द बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी।
सर्टेनली।
आवर नेक्स्ट कॉलर योगेश शर्मा हैज जॉइंड अस फ्रॉम दिल्ली। योगेश जी वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
जी आप सभी को नमस्कार और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। और मैं उम्मीद करता हूँ सबका पोर्टफोलियो लाल से हरा हो जाए होली के बाद। मेरा सवाल यह है सर कि भारत में पैसिव इनकम को लेकर के, पैसिव इनकम का सोर्स खड़ा करने के लिए कौन सा एसेट क्लास जो है काफी ज्यादा आप सूटेबल समझते हैं? और एक दूसरा सवाल है कि इंडिया में सेफ विड्रॉवल रेट कितना रखना चाहिए?
देखिए जी, पहली चीज तो है कि लाल और हरा जो आपने बात करी बड़ी अच्छी करी, हर एक जना चार हरी हरी चाहता है, हरी हरी घास, हरी हरी झंडी, हर एक चीज हरी चाहता है। पर जिंदगी के अंदर लाल और हरा दोनों रहता है, जैसे हार्ट बीट होती है लाल भी रहता है हरा भी रहता है, बिकॉज कोई अगर हरा लेगा तो दूसरे का लाल होगा तभी दूसरे का हरा होगा, नहीं तो हरा नहीं हो सकता है। शेयर मार्केट का बड़ा सिंपल रूल है ये। तो इसलिए सोचना कि आपका हरा हरा ही रहे हमेशा वो ठीक नहीं रहेगा। जहां तक आपने बात करी सेफ की, ये एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव के ऊपर होता है वो किस एसेट्स में ज्यादा ट्रेड करना आता है। जनरल जो पर्सपेक्टिव है एक आम आदमी का वो ये रहता है गोल्ड और रियल एस्टेट, बिकॉज उसमें वो एक्सटेंसिवली स्टेट नहीं करते हैं तो उसमें सेफ और स्लो स्ट्रक्चर रहता है, उसमें सेफ्टी बनी रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती और लॉन्ग समय के अंदर ड्यूरेशन में वो रिटर्न दे पाते हैं।
बिल्कुल, और आपने बिल्कुल कहा कि किसी का लाल दूसरे का हरा हो जाता है, यानी कि किसी का जो प्रॉफिट होता है वो दूसरे का लॉस ही आपके प्रॉफिट में तब्दील होता है।
देखिए अगर हम काम कर रहे हैं तो कोई तनख्वाह दे रहा है तो जब उसका एक्सपेंस है तभी हमारा इनकम है, तो इसी तरीके से शेयर मार्केट में है।
बहुत सही आपने बताया। और अतानु के पास जाने से पहले बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक को ब्रिटेन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया। केंद्रीय बैंक को प्रवाह और सारथी नाम की डिजिटल पहलों के लिए सम्मानित किया गया है। इन्हें बैंक की इन हाउस टीम द्वारा विकसित किया गया था। पुरस्कार समिति ने कहा है कि इन डिजिटल पहलों ने कागज के इस्तेमाल को बेहद कम कर दिया है। जनवरी 2023 में शुरू की गई सारथी पहल से रिजर्व बैंक में आंतरिक वर्कफ्लो डिजिटल हो गया, जिससे कर्मचारी सुरक्षित रूप से दस्तावेजों को संग्रहित और साझा करने में सक्षम बने। इससे रिकॉर्ड के रख रखाव में सुधार हुआ और रिपोर्ट तथा डैशबोर्ड के माध्यम से डेटा विश्लेषण के विकल्प भी बढ़ गए। सारथी प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाकर बैंक की परिचालन क्षमता को बढ़ाने में बेहद मदद मिली है। और ये आरबीआई को जो पुरस्कार मिला है, जो अवार्ड मिला है, अमन जी इस पर आपकी टिप्पणी जरूर चाहेंगे। पूरी दुनिया में जब एक तरीके से मंदी छाई हुई थी, चाहे वो यूरोपीय देश हो या अमेरिका हो, उस समय जिस बेहद बेहतरीन तरीके से आरबीआई ने एक ग्रोथ और इन्फ्लेशन को मैनेज किया, बैलेंस किया, इसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है और हमारे डिजिटल बैंकिंग को जो डिजिटल पहले हैं उसके लिए ये अवार्ड बहुत सही मिला है।
नहीं, आपने बिल्कुल कहा, सही कहा, ये बड़े सही समय पे आया है और पहली बार नहीं है कि जब सेंट्रल बैंक हिंदुस्तान का जिसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। अगर आपको याद हो 2007-08 में जब अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तब भी हिंदुस्तानी बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था, जो उसकी सुदृढ़ता थी, स्ट्रेंथ थी उसके ऊपर। और इस बार जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात की गई है, ऑल्दो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो सारथी और प्रवेश प्रवाह के नाम से है, ये जो उसको दिया गया है वो एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है, डिजिटलाइजेशन रिकॉर्ड्स है, ऑटोमेशन सिस्टम्स हैं उनके ऊपर किया गया है, पर उससे ज्यादा कहीं इस समय आरबीआई कर रहा है जो विश्व में कोई सेंट्रल बैंक नहीं कर रहा है। पहली बात मैं बताऊं, जो डिजिटल रुपी जो लॉन्च हुआ है, विश्व में कोई ऐसा सेंट्रल बैंक नहीं है। अमरीका भी पिछले 5 साल से 4 साल से बात कर रहा है, चाइना भी 5 साल से बात कर रहा है, हिंदुस्तान पहला कंट्री है जिसने डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करके प्रैक्टिकली उतारी है मार्केट में। इसके अलावा जो रिपोर्टिंग है, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, उसमें भी काफी हद तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। मेरे विचार में वो भी अगर ये डिजिटल सेंट्रल बैंकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कंसिडर करे तो आरबीआई को देखेंगे आप कि इन नंबरों में भी काफी आगे जाएगी। और मैं चाहूंगा कि ऐसे कुछ और एजेंसीज उसको आइडेंटिफाई करके आरबीआई को सराहें ताकि हिंदुस्तान को और विश्व को लगे कि आरबीआई एक बहुत स्ट्रांग है, उससे हिंदुस्तान की छवि भी बड़ी अच्छी होती है।
एंड नाउ अतानु साहा इज विद अस फ्रॉम कोलकाता। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग एंड प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। जस्ट वन थिंग, थैंक्स टू बिकॉज ऑफ आरबीआई एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मेंटेनिंग इट्स ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन बोथ ऑन पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर वे एंड पर्टिकुलर सिस्टम, थैंक्स टू आवर सेंट्रल बैंक। सो सर, माय क्वेश्चन इज सर दैट प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द कंज्यूमर इन इंडिया। And another one is that I am going to purchase dollar. So in this regard, I am very, I'm not really, when do I do purchase that one? Because on 17th March, the dollar index, mainly in world, dollar index, the end of the expiry date. So do we, we have to wait because today is on 15th. Do we expect that due to expiry of dollar index, it will be because right now it is 0.103 near to 103. So at one point, and do we wait for coming month, May first week?
Yeah, Mr. Saha, you see, your questions are very interesting, but firstly, I do not know what is the purpose of your buying a dollar. Now, if you are just buying it from an investment perspective, I don't know if you are allowed to do that in terms of holding, because you have to have an NR account, foreign exchange account, and you have to show your source of income of doing it. You can't just convert it and keep it there. It has to be a source which comes from outside. That's where you're getting that dollar from. Secondly, if you're just buying it for the purpose of travel or tours, which you are happening, then the dollar is given to you by the travel ex company, which the travel exchange company which is you're buying it from. Normally it's an average rate which they give it on, and that rate changes even during the day if there is too much of volatility, which is happening lately also. So there are changes which happen, and there is a premium which they charge on it. So to say where you can buy it from, it depends on, because you're not, I don't expect you to be a buyer of $1 billion kind of a dollar, where businessmen actually go and trade on such kind of rates, and that's where they have a negotiating power with the bank whom they're actually buying it from, or from a travelex company where they're buying it from. So other than that, I do not see one can just go and buy and keep it like one buys gold or real estate. As far as consumers, consumer perceptions, consumerism is going up, consumer spending is going up, markets are growing up, and that's why we are seeing both the GDP and the GST numbers and other numbers going up very well, even in terms of exports. The companies and the Indian government is bullish and performing very well, as we saw from the UN news, which has shown a positive trend despite a negative trend in the total world's growth. So from that perspective, we are in a very positive mood, and fortunately the markets are also responding positively for a common man.
Ji, Saurav Hyderabad se hamare sath jud chuke hain. Saurav ji, swagat aapka, sawal pooch le please.
Good evening, Market Mantra.
Good evening. Good
evening. I wanted to ask the expert about the following situation. About 10 blue chip stocks are there, out of which about 4 are in red and 6 are in green. Now I want about 1/5 of the money. So what should I do? Should I only sell from the green, or should I sell across green and red and then take out this money? This money is required urgently.
Certainly. So I think since you know need the money, so you are for sure going to be selling. What's one more important component is, which are those stocks which can actually fill in your pocket fastest here? So whichever can fill in the pocket fastest with giving you the least loss or the maximum revenue should be the choice of from these. The second option is you should look at also is the fact that where you're seeing a steep fall or their fundamentals going down or the company's perspective or the company's board having a problem, Google it out. Just find it out as to what news is coming on them. And if you find that there is a risky stock, blue chip, which is there, although it's a blue, but still they can be risky. We never knew Kingfisher will just go away. So there are companies which are very blue chip in nature but happens to double off. So you need to really look at how things are going up, and if they are finding any one of these 10, 12 which you have, having this kind of scenario, you should let go of it, even if it is giving you a little loss.
And now we go across to our next caller, Gaurav from Ghaziabad. Please ask your question.
Good evening, Market Mantra team.
Good evening.
So Sensex is 75,000 level. It was in April 2024, and then it went up to 85,000 and again back to 72,000. So in the last 1 year, we have been investing through SIP into various funds. The market actually hasn't given any return, it's given negative return. So for a middle class investor like us, who has been investing through SIP in these funds, and since the government has also reduced heavily the income tax, which means they expect inflation either to rise or rupee to fall. So what do you see, how do you see that the return we will get from the investment made in last 1 year, when it will be giving, when it will beat the inflation, which is almost like 7-8%. I mean to say, will the investment in the equity funds which have gone in last 1 year, when will it give us a better return than the inflation? Thank you.
I think only God can answer this question, because he would know when is what happening. Let me be very frank with you and a blunt. You see, the fact is that the markets are volatile. Because they are volatile, that's where people make money. And as I said earlier, some people gain, some people lose in the market, and that's how some people gain. Now, the question here is, how do you look at the average return? You have to be constantly on a check and see when the rates are going up and when do you want to exit and when do you want to enter, in which stock you want to exit and when you want to enter. And hence, you need to keep a tab and not be a holder for long term if you're looking at. And if you're a holder or long term, you can still hold on further for next 6-7 months and you will see the return which you're expecting.
And now let's go to the U.S. markets. U.S. stocks rebounded yesterday as investors hunted for bargains at the end of a tumultuous week in which the U.S. President Donald Trump's escalating trade war fueled recession fears and dampened risk appetite, overshadowing other encouraging signals about the economy. A broad rally boosted all three major U.S. stock indices to solid gains, with recently battered tech-related mega caps staging a comeback. Both the S&P 500 and NASDAQ Composite logged their biggest one-day percentage gain since November 6, the day after the U.S. presidential election. The NASDAQ Composite gained 451 points, or 2.61%, to end at 17,754. The S&P 500 advanced 117 points, or 2.13%, to settle at 5,639, and the Dow Jones Industrial Average rose 675 points, or 1.65%, to close at 41,488. Even with yesterday's bounce, the S&P 500 and the NASDAQ notched their fourth straight weekly losses. For the week, the Dow Jones Industrial Average shed 3.1%, logging its worst week since March 2023, and NASDAQ dropped 2.4%, while the S&P 500 fell 2.3%. Investors are now gearing up for the Federal Reserve policy meeting scheduled for next week.
इस पे एक छोटी सी टिप्पणी जरूर चाहिए अमन जी आपकी. US मार्केट लगातार गिर रहा था, लेकिन थोड़ी सी रिबाउंड वहां पे हुआ है. मार्केट क्या वहां संभल जाए? अब ट्रंप संभल गए?
नहीं नहीं, मेरे विचार में गलत धारणा है कि ट्रंप संभल गया, कुछ हुआ है. देखिए, नेक्स्ट वीक फेड के मीटिंग होनी है, और ट्रंप ने जब आए थे उन्होंने कहा था हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए करेंगे, कुछ ऑयल में भी चेंजेस करेंगे ऑयल के बेसिस पे, बट उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है
जी।
तो मेरे को नहीं लगता कि फेड के पास इतना भी लेग रूम है कि कुछ वो कर सके, बट उम्मीद लोगों की है और उम्मीद में लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं,
उम्मीद पर दुनिया भी कायम है। और आज के एपिसोड में इतना ही। अमन जी आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू, नमस्कार।
एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। India maintained strong trade momentum during the October-December quarter of 2024, highlights UN report. RBI gets selected for Digital Transformation Award 2025 by Central Banking in UK. And US stocks rebound with strong gains, but weekly losses mount amid escalating trade tensions. And that's it in this edition of Market Mantra. See you tomorrow at the same time. Namaskar.
Namaskar. Get some fun.